हरे कृष्णा। तो आप सबका श्री राधा रानी का रमन कृष्ण वरनाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर पंजाबी बाग में प्रातः काल के भागवत सत्संग में स्वागत। प्रतिदिन भागवत का श्रवण नित्यम भागवत सेवया, भागवत का नित्य श्रवण भागवत भक्तों के संग में नैष्ट की भक्ति प्राप्त करने का उत्तम साधन है। नैष्ट की भक्ति, निष्ठा वाली भक्ति, आप भाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में इस भागवत का श्रवण का संयोग बनता है। सब मंदिरों में ये प्रतिदिन प्रातः भागवत सत्संग का प्रथा चल रही है। निश्चित रूप से हमको उत्साह के साथ इसमें श्रवण की जो पहली भक्ति का अंग है नवदा भक्ति में उसका पालन करना चाहिए। यही भक्ति के बीज का जल है जिससे इसका सिंचन होता है। और भक्ति का बीज भक्ति के नेम है। और उन नियमों के अंतर्गत एक भागवत श्रवण भी नियम है भक्ति का। तो ये भक्ति का बीज है जो नियमावली है भक्ति की, ये भक्ति का बीज है। और इस श्रवण उस बीज को जल देना है। तो श्रीमद् भागवत क्रम से हम पांचवें स्कंद के अंतिम 26वें अध्याय के समाप्ति के श्लोकों के पास पहुंचे हैं। इस अध्याय में नरकों का वर्णन है और कल भी चर्चा की थी कि विराट पुरुष के ध्यान का ये वर्णन है। विराट पुरुष का ध्यान इसलिए किया जाता है कि जब आदमी नया नया होता है तो छोटी सूक्ष्म चीजें उनको नहीं दिखती हैं, स्थूल चीजें दिखती हैं। जैसे भगवत गीता में भी ये प्रणाली है, भगवान को देखने के लिए, भगवान को जानने के लिए पहले सूर्य चंद्रमा का वर्णन है। सूर्य चंद्रमा तो सब देखते हैं ना, कोई ये तो नहीं कह सकते कि हमने सूर्य चंद्र को नहीं देखा है। यदा आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम, यहां से पुरुषोत्तम योग में भगवान पुरुषोत्तम को जानने की प्रथा यहां से चलती है। स्थूल से मोटी चीज को तो सब देख सकते हैं, कोई नहीं कह सकता हमने सूर्य ने को नहीं देखा है। फिर यहां से भगवान वो चीज कहते हैं जो आसानी से समझ में आ सकती है कि रोज भोजन करते हो अंदर में कौन पकाता है, अहम वैश्वान रो भूतवा, तो रोज भोजन को पकाता है ये भी सब समझ सकते हैं कि माँ तो चूल्हे के ऊपर पकाती है लेकिन खाने के बाद अंदर कौन पकाता है उसको, इतनी बड़ी प्रक्रिया अंदर कौन चलाता है, अंदर कौन किचन की सफाई करता है, हर एक चीज को कौन कचरे के ड्रम में डालता है, कौन इधर से उधर पोचा लगाता है, इतना बड़ा कार्य भगवान बोलता है मैं अंदर कर रहा हूं। तो ये भी भगवान को जानने का दूसरा, फिर इससे आगे चल के फिर परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में बैठ रहा हूं। तो स्थूल से शुरू होता है भगवान को जानना। तो विराट रूप, पहले रूप है इसका मतलब भगवान का रूप है, तो निराकार से तो विराट रूप का ध्यान भी उत्तम है। विराट रूप का ध्यान निराकार से उत्तम है। रूप तो है ना, तो यहां नरकों का वर्णन डराने के लिए नहीं है। नरकों का वर्णन विराट रूप की पूर्णता का सूचक है कि विराट रूप के मलमूत्र त्यागने के स्थान को वो नरक है। नरकों का वर्णन उस स्थान का विराट रूप का वर्णन है। और उसके साथ नरकों का वर्ण हमारे को संस्कारित करने के लिए है कि हम अपने जीवन में ऐसे संस्कार अपनाएं कि हमको दुर्घटना से बचना पड़े। भाई नरक में जानना दुर्घटना है, तो दुर्घटना में से बचने के लिए सावधानी, संस्कार संस्कारित आदमी होगा तो सावधान हो जाएगा। जैसे बीमारी से बचने के लिए परहेज अच्छी होती है, बीमारी का इलाज कराने से, बीमारी आने से पहले उसके बचने का साधन करना मुख्य है। सारे आयुर्वेद में 90% से ज्यादा बीमारी से बचने का साधन है, इलाज तो केवल 10% होता है। तो ये नरक का वर्णन हमको ऐसा संस्कारित, ऐसा हमारे को सदाचारी सात्विक बनना है कि दुर्घटना से बच जाए, इसको ऐसे देखना चाहिए। इसको भयानक रूप से पेश करने की जरूरत नहीं है कि लोग परेशान हो नरक से, लेकिन इसका पॉजिटिव जो इसका सकारात्मक जो भाव है कि हमको कैसा संस्कार जीवन में धारण करना चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, धन को सदुपयोग करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, मांस मदरा से परहेज करनी चाहिए। तो ये सात्विक भाव लाने के लिए है। तो 28 नरकों का ही वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया है, इसलिए कि समय कम था और सुनने वाला महान भागवत परीक्षित महाराज तो भगवत धाम जाने वाला था, लेकिन फिर भी संस्कार करने के लिए कहके और आज के श्लोक में सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। नरकों का वर्णन हो गया, अब सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। ये 37वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। एवं विधा नरका यमाल्ये संति सतश्यः सहस्रश्च तेषु सर्वेषु च सर्व एवा धर्मवर्तिनो ये केचिद् इहोदिता अनुदिताश्चावनीपते प्रियायेन विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरता इयतो पुनर्भवे त उभये शेषाभ्याम निविश्यन्ति। एवं विधा नरका यमाल्य संति, एक होता है विधि, एक होता है विधा। विधि और विधा में थोड़ा सा अंतर है। तो यहां एवं विधा, अभी तक जो आपको बताया ये इन नरकों के बारे में, कौन लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं, नरक में जाने की विधि नहीं बताया। विधि का मतलब है कि आपको वहां जाना है, विधा का मतलब है सावधान होता होना है वहां जाने में। तो अभी तक हमने जो आपको ये विधा बताया नरक, इन नरकों का यमालय, यमालय ऐसे समझना चाहिए औषधालय में औषधि होती है, दुखालय में दुख होता है, और यमालय में यम का दंड होता है। यमालय जैसे विद्यालय ऐसे यमालय है, विद्यालय में कौन जाता है, स्कूल के बच्चे पढ़ने जाते हैं, और यमालय में कौन जाता है, पापी जाते हैं। तो यमालय में केवल पापियों का ही मिलना, यमालय विद्यालय यमालय। तो यम का जहां यम के दूत सबको दंड देते हैं यमालय। संति का मतलब है कितने हैं, यमालय कितने हैं, मतलब अब 28 ही बताए तो कोई आदमी कहे कि भाई दिल्ली में 28 स्कूल है तो काम चलेगा नहीं, 28 जेल है तो काम चलेगा नहीं, तो कितने हैं यमालय, तो कहे सत सहस्र का मतलब सैकड़ों हजारों है। कितने यमालय हैं, सतशह सैकड़ों सहस्र हजारों, ऐसे तो और भी 28 का हमने नाम लिया है सुखदेव महाराज कहते हैं, लेकिन ऐसे असंख्य और हैं, हजारों सैकड़ों का मतलब गिनती से ज्यादा है। तेषु, तेषु को मतलब ऐसे नरक, सर्वेषु उन सब में, अधर्म वर्तिना जो लोग अधर्म का आचरण करते हैं। अब इतने सारे काय के लिए हैं, कौन वहां जाएगा, बोला अधर्म का आचरण करने वाले। अधर्म का आचरण का अर्थ क्या होना चाहिए, जो धर्म के ऊपर नहीं चलते हैं। जेल में कौन जाता है, जो कानून का पालन नहीं करता। तो धर्म भगवान का कानून है, जैसे देश का संविधान कानून होता है, देश का एक कानून है ना, क्या कहते हैं कानून को, संविधान, जैसे लाल बत्ती ट्रैफिक का कानून है, जो इसको तोड़ेगा उसको दंडित होना पड़ेगा, तो ये नियम है। ऐसे भगवान के कुछ नियम है, उनको धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? भगवान की शिक्षा। जैसे यमराज स्वयं धर्म का जब समाचार देते हैं कि धर्म किसको कहते हैं, धर्मात् साक्षात् भगवत प्रणीतम, जो भगवान के द्वारा नियमावली दी जाती है उसको धर्म बोलते हैं। और भगवान आते ही क्यों है संसार में? धर्म को स्थापन करने के लिए। धर्म स्थापन अर्थाय, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। इसका मतलब धर्म का पालन करना हर सभ्य व्यक्ति का कर्तव्य है, अनिवार्य है। जैसे हर अच्छे नागरिक को देश के नियम का पालन करना चाहिए। हर एक व्यक्ति लाल बत्ती के ऊपर खड़ा होता है उसको कहेंगे ये नियम का पालन कर रहा है, जो तोड़ के जाएगा उसको क्या कहेंगे, नियम तोड़ रहा है। नहीं पकड़ा पुलिस वाले ने कोई बात नहीं, लेकिन नियम तो तोड़ा ना, एक बार नहीं पकड़ा, दूसरी बार नहीं पकड़ा, लेकिन आदत बन जाएगी तो एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। तो धर्म का पालन नहीं करना अधर्म हो जाता है। तो अधर्म अपने आप में कुछ नहीं, धर्म का पालन नहीं करोगे तो अधर्म हो जाएगा। और यहां प्रभुपाद जी ने धर्म अधर्म वर्ति ना को लिखा है, वो लोग जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते। जैसे वैदिक नियमों का एक पालन है सुबह सवेरे उठना, एक वैदिक नियमों का पालन है सुबह सवेरे उठना, सूर्य उगने से पहले उठना, ये वेदों का एक नियम है। अब जो इसका पालन नहीं करता है तो धर्म को तोड़ रहा है, धर्म को टूटना हो गया ना। रोज प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करनी है, तीन बार संध्या में बैठ के भगवान का स्मरण करना है, ये नियम है वेदों का। जो इसका पालन नहीं करता है वो अधर्म कर रहा है। ये साधारण से नियम है, सच बोलना है, ये धर्म का नियम है। दया, तपस्या, पवित्रता और सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता, ये चार धर्म के नियम है, ये चार धर्म के स्तंभ है। नियम क्या, नियम क्या, धर्म इसके ऊपर खड़ा है, दया, तपस्या और सत्य और पवित्रता। और इन चार को तोड़ने के लिए चार पाप कर्म कौन से हैं? जुआ सत्य से सत्य समाप्त होता है, नशा करने से तपस्या जाती है, पशु हंसा करने से दया जाती है और व्यभिचार करने से पवित्रता जाती है। इसका मतलब ये चार अधर्म के कार्य हैं, ये चार अधर्म के कार्य हैं। और जो इसमें प्रवृत्त होता है, जो इसमें करने में शौक रखता है, वो अपने आप को जबरदस्ती नरक में ले जाता है। बहुत बड़ा परिश्रम करता है, करना पड़ता है नरक में जाने के लिए, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल बैठ के हरे कृष्ण जपना है और प्रसाद खाना। हाँ, भगवत धाम जाना इतना आसान है कि हरे कृष्ण जपो प्रसाद खाओ, और नरक में जाने के लिए एक दूसरे को मारना पड़ेगा, हाँ शराब पीना पड़ेगा, पैसा खर्च करके पशु को मारना पड़ेगा, हत्या करनी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी, व्यभिचार करना पड़ेगा, अनाचार करना पड़ेगा, तब जाके आदमी नरक में जाना है। तो नरक में जाना कितना मुश्किल है और भगवान के पास जाना कितना आसान है, फिर भी लोग नरक में जाने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, देखो हैं? कितनी मेहनत कर रहे हैं नरक में जाने के लिए, तो उल्टा है ना कि नहीं। तो अधर्म का मतलब है, यहां लिखा है एवं विधा, पुरुष जो वैदिक नियमों या विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं उसको बोलते हैं अधर्म वर्जिना। ये केचित जो भी ये यहां उदिता वर्णित, अभी तक जो वर्णन किए नरक, अनुदिता जिनका वर्णन नहीं भी हुआ है, हम तो 28 का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन पापी इससे ज्यादा है, अधर्म करने वाले इससे ज्यादा है, जिनका वर्णन हमने नहीं भी किया है। अवनी पते हे राजन, अवनी धरती को कहते हैं, जैसे भूमि है ना, इसका एक नाम है अवनी, अवनी पते का मतलब राजा, अवनी पति राजा, जैसे भूपति बोलते हैं, भू धरती को कहते हैं, तो राजा को अवनी पति, भूपति, तो अवनी पति, यहां अवनी सिर्फ इसलिए हम कहते हैं अवनी का अर्थ हमको एक अच्छा संस्कृत का अर्थ आना चाहिए। अवनी का मतलब पृथ्वी, जैसे भूपाल बोलते हैं, भोपाल है ना, तो भोपाल भू का मतलब धरती, पाल कर पालन करने वाला मतलब राजा, तो भू को पालन करने वाला, तो यहां अवनीपति का मतलब है राजा, हे राजन। प्रायेण पाप कर्मों के अनुसार विशंति प्रवेश करते हैं, इसका मतलब जिनका वर्णन नहीं भी किया है तो ऐसे कोई कहे कि इसके अलावा भी तो बहुत सारे पाप हैं, आपने तो बहुत कम बताया है। बोला बहुत सारे पाप हैं और बहुत सारे और भी असंख्य नरक हैं, जहां जहां जैसा जो पाप करता है उसको वहां भेजा जाता है। और फिर तथा एव उसी प्रकार धर्म अनुमूर्ति न जो पवित्र है और वैदिक आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। अब ये बड़ी बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं, अभी तक तो कहा कि जो पाप करते हैं वो नरक में जाते हैं और बहुत प्रकार के अधर्म भी हैं, भगवान के नियमों का पालन करते हैं तो उन जैसा जैसा पाप वैसे वैसे स्थान के ऊपर जाएगा, लेकिन अब जो अच्छे धार्मिक कार्य करते हैं और नियमों का पालन करते हैं उनके लिए भी अलग अलग लोक है, वो कहां जाते हैं, उनकी इस तरह है अन्यंतर, हाँ इतरतर अन्यंतर इह इस लोक में तू, लेकिन पुनः वो फिर दूसरी जगह जाते हैं। अधर्म धर्म का पालन नहीं करता वो तो नरक में जाता है, तो धर्म का पालन करेगा वो कहां जाएगा, ये पूछ रहे हैं। बोला धर्म का पालन करेगा वो और स्थानों पे जाएगा, कहां जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा, इसको ऐसे समझ ले, जो पाप करेगा वो जेल में रहेगा, पाप नहीं करेगा वो अपने महल में रहेगा, यही हुआ ना, अपने घर में रहेगा, लेकिन रहेंगे तो दोनों देश के अंदर ही ना। देखो हम जेल में नहीं है, बाहर हैं, लेकिन फिर भी हमारे को भारत से बाहर जाना है तो नहीं जा सकते, जा सकते हैं, हम बड़ा अच्छा नियम का पालन करते हैं, जो देश का नियम है उसका पालन करते हैं, और जो जेल में है वो देश का पालन नहीं करते हैं, वो जेल से बाहर नहीं जा सकते हैं और हम भारत से बाहर नहीं जा सकते, जा सकते हो, नहीं जा सकते ना, जब तक उसके लिए और कोई फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी ना, इसका मतलब दोनों तो बंधे हुए तो है ही, एक छोटे सी चार दीवारी में बंधा हुआ है, एक बड़े से दायरे में बंधा हुआ, लेकिन दोनों है तो बंधे हुए। ये बात अब सुखदेव गोस्वामी बहुत गंभीर बात कह रहे हैं कि धर्म के आचरण करने वाले अथवा वेदों के नियमों को पालन करने वाले जो हैं वो अन्य स्थान के ऊपर जाते हैं। तू का मतलब फिर भी, लेकिन तू का मतलब लेकिन, छोटा सा शब्द है लेकिन कहता है दोनों बराबर हैं। लेकिन पुनः भवे, उनको वापस इस दुनिया में आना पड़ता है, दोनों को वापस आना पड़ता है, पापी को भी आना पड़ता है और पुण्य आत्मा को भी आना पड़ता है। ते वे सब उभ्य शेषाभ्याम पुण्यों तथा पापों के फल के शेष भाग से निविष्यन्ति प्रवेश करते हैं। अब इसका अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा पढ़ते हैं। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा राधिका रमण की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री गौर नेताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं, केवल 28 नहीं है, 28 का तो नाम गिनाया है, लेकिन वो अंग्रेजी में एक शब्द होता है या हिंदी में कहते वगैरह वगैरह, ईटीसी, ईटीसी का मतलब है असंख्य, क्योंकि गिनती नहीं होती है इसलिए वगैरह वगैरह लिख के जानते रहे, तो वगैरह वगैरह में हजारों रह, सैकड़ों और भी नरक है। आप ये मत समझना कि इतना ही धर्म का जो अधर्म है, अधर्म बहुत ज्यादा है, भगवान के नियमावली को पढ़ हजारों नरक है। मैंने जिन पापी मनुष्यों का वर्णन किया है और जिनका वहां उल्लेख नहीं हुआ है, वे सब अपने पापों के अनुसार इन विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे, करेंगे मतलब भविष्य की बात है, जो कहा है ये तो 28 नरकों में, ये पाप करने वाला इनमें जाएंगे, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे और पाप हैं, उनके लिए और भी नरक हैं, वहां जाएंगे। अब दूसरा पक्ष, किंतु जो पुण्य आत्मा है वे अन्य लोकों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं। तो एक यमराज भी देवता ही है, एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो भी गवर्नमेंट का ऑफिसर है, आईएएस है, और एक पुलिस जेल सुप्रिंटेंडेंट है वो भी आईपीएस है, दोनों भी इंडियन गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर है ना, एक आईसी और क्या एक क्या कहते हैं आईएएस और एक आईपीएस, दोनों हैं तो देवता, लेकिन एक जेल का देवता है और एक डिस्ट्रिक्ट का देवता है। ये बात समझ में आ रही है ना, है तो दोनों ही बड़े आदमी, यमराज भी बहुत बड़ा देवता है, यमराज साधारण नहीं धर्मराज है, लेकिन उसका काम क्या है, चोरों को सजा देने वाला डिपार्टमेंट उसके पास है, वो प्रिजन मिनिस्टर है, और जो उसके पास जाते हैं तो बात है कि वो एक तो यमलोक में जाते हैं और दूसरे देवताओं के लोक में जाते हैं। एक ज्यूरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट, पूरी डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर है, डीसी पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखता है और जेल सुप्रिंटेंडेंट पूरी जेल को देखता है, और दोनों में नागरिक है भारतवर्ष के, एक नियम को तोड़ के गया है और एक नियम का पालन कर रहा है, उसका देखभाल करके किया जा रहा है, भाई इससे कोई अन्याय ना हो इसके लिए वो न्याय दे रहा है। तो ऐसे वो देवताओं के लोक में जाते हैं, तो भी अपने पुण्य पाप के फलों के क्षय होने पर पुण्यात्मा तथा पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। ये बहुत भारी स्टेटमेंट है, पापी दंड भोग के भोगते आते हैं और पुण्य आत्मा मौज मनाकर वापस लौट के आते हैं, ये समझ लीजिए। एक पिकनिक करने गया था वो लौट के आया एक जेल में, वो हनीमून मनाने गया था वो महीने के बाद लौट के आया मलेशिया से, और किसी का फोन चोरी किया था मोबाइल, वो एक महीना जेल से लौट के आया, लेकिन दोनों लौट के तो आए अंतर तो कोई नहीं है दोनों में, वापस तो लौट के आना पड़ा दोनों को, घर में ही आए, जिस घर से गए थे उसी स्थिति में वापस आ गए। तो ये इसका अर्थ है कि दोनों को वापस लौटना पड़ता है। तो बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि धर्म का पालन करने वाला भी वापस आएगा, वेदों का धर्म नहीं, यहां लिखा है वेदों के नियमों का पालन करने वाला, वेदों के अंदर 85% स्वर्ग में जाने का ही साधन है, कर्मकांड है केवल स्वर्ग में जाने का साधन है और संसार में सुखी रहने का साधन है, उपासना बहुत थोड़ा सा 15% भी उपासना कांड नहीं है। इसलिए जो अपन साधन कर रहे हैं इसको भागवत धर्म बोलते हैं, वैदिक धर्म नहीं, भागवत धर्म का पालन हम कर रहे हैं। ये जो अपना कृष्ण भावना अमृत संग है ये भागवत धर्म है, भागवत धर्म वेदों के नियम से ऊपर है, हम भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं। इस धर्म के शिक्षाओं के अंतर्गत जाने वाले को न देवलोक में स्वर्ग के सुख भोगने जाने की जरूरत है, न नरक में दंड भोगने की जरूरत है। ये कहां जाएंगे, भागवत का मतलब भगवान के समान अथवा भगवान को प्राप्ति करने वाला, तो भागवत धर्म को पालन करने वाले भगवान के पास जाएंगे। तो हम भागवत धर्म के अनुयायी हैं और भागवत धर्म वेदों के विधि विधानों से ऊपर है, इसलिए भगवत गीता में भी भगवान ने दो जगहों पे, दो तीन जगहों पे मिलेगा कि दूसरे अध्याय में मिलेगा, वेदों के पुष्पित वाक्यों से अपने आप को मुक्त करा के और ऊपर आना चाहिए, ये आपको स्वर्ग के सुखों में बांध देंगे। ये पुष्पितम वाक्यम, तो जो ये दूसरे अध्याय का है, व्यवसाय आत्मिक बुद्धि के बाद वाले जो दो श्लोक हैं, ये वेदों का पुष्प। और फिर निश्चर गुण भव अर्जुन, वेद तीन गुणों के अंतर्गत ही शिक्षा देते हैं, लेकिन अर्जुन आप तीन गुणों से ऊपर आ जाओ, क्यों? भगवान निर्गुण है। भगवान निर्गुण है इसका मतलब नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं है। भगवान निर्गुण का अर्थ नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं है, भगवान तीनों गुणों से परे है। निर्गुण का अर्थ ये, भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वगुण संपन्न है लेकिन भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण बोलते हैं। भगवान निराकार हैं क्योंकि वो किसी भी भौतिक पदार्थ के बने हुए नहीं है। जो आकार संसार के हैं वो तो पांच भूतों के बने हैं और वो काल के गाल में चले जाते हैं। भगवान का आकार दिव्य है, वो सच्चित आनंद है, इसलिए निराकार कहने का अर्थ उसका आकार भौतिक नहीं। और कभी तो एक महात्मा तो हमारे कहते थे ये निराकार पढ़ने में गलती हो रही है, असल में निराकार शब्द है, ने नहीं है, न है, नर आकार। भगवान का जो आदि रूप है वो गोविंद, गोविंदम आदि पुरुष, वो नराकार है, द्विभुज है, श्याम सुंदर है, वो नर आकार है, निराकार नहीं। लेकिन वो पढ़ने में गलती होती है उनसे, भगवान नर आकार है। इसलिए यीशु लिखा है कि गॉड हैज मेड द मैन ऑन हिज ओन इमेज, भगवान ने मानव को अपने ही रूप के अनुसार बनाया। तो भगवान का रूप कैसा होगा? जैसे मानव को अपने रूप के बनाया, और भगवान का आदि रूप कैसा है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कैसे हैं? वो तो 15-16 साल के छोटे से ग्वाल बाल हैं। गोप रूप भगवान का स्वयं रूप है, गोप रूप, गोविंदम इसलिए कहते हैं। गोविंदम भगवान को किसने नाम दिया? सुरभि गाय ने, सुरभि गाय और इंद्र जब आए थे, सुरभि क्योंकि गायों की रक्षा भगवान ने की, और इंद्र आने में डर रहा था कि मैंने अपराध किया है कैसे जाऊं, तो ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो किसी ऐसे को लेके जाओ भगवान के सामने कि तुम बात करने के लायक बचो। तो इंद्र स्वर्ग का राजा होते हुए भी सुरभि गाय के खुरों में जाके प्रणाम करके कहते हैं माँ आप चलो, भगवान गाय गोपाल है, आपको देखेगा तो हमको माफ कर देगा। सुरभि गाय आगे आई, भगवान की बहुत प्रशंसा प्रार्थना की कि आपने हमारी गायों की रक्षा की है, गोवर्धन आप, गौवर्धन गायों को वर्धन करने वाले हैं, और बस मैं आपको ये कहता हूँ ये इंद्र आपसे क्षमा याचना मांगने आया है। अच्छा भगवान ने कहा आप कहते हैं चलो इंद्र को बुलाओ। फिर अभिषेक भगवान का जब किया तब इंद्र ने और सुरभि गाय और सारे देवता अन्य और भी आए और सामग्री सारी देवलोक से आई, तब भगवान का नाम गोविंद, तब से गोविंद बोलते हैं भगवान को। तो ये भगवान का कौन सा रूप है? असल में देखा जाए तो 7 वर्ष का गोवर्धनधारी भगवान को गोविंद तब इसको बोला गया। ये भगवान का स्वयं रूप, गोविंद माधि पुरुषम तम अहम भजामि, रोज गाते हैं ना, तो ये गोविंद शब्द तब भगवान के साथ लगा जब भगवान 7 वर्ष के थे और गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। गोवर्धन पर्वत भगवान 7 साल के धारण किया था। ये जो रूप है भगवान का, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप है। गोविंद माधि पुरुषम से ये लग, ये दिखता है, ये से ऐसे घोषित होता है। और इसलिए वो रूप जिसमें माधवेंद्रपुरी के सामने भगवान दूध का लोटा लेके और लकुटी के ऊपर से हाथ रख के खड़े हुए थे, वो स्वयं श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में ऐसे ही रहते हैं, इस रूप में रहते हैं। ये भगवान का स्वयं रूप है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ये भगवान स्वयं है। तो गोविंद आदि पुरुषम कहने से ये संकेत मिलता है गोविंद का नाजाम दिया, वो रूप जो है वो अद्भुत रूप है। जैसे श्रीनाथ जी की जो पूजा होती है ये भगवान का वो रूप है, इसको इसका नाम क्या था, गोपाल जी, गोपाल जी बाद में इसका नाम श्रीनाथ जी अभी कहते हैं। तो राधिका हो गई श्री का नाथ, लेकिन दूसरा नाम है उसका गोवर्धन नाथ, गोवर्धन नाथ लेकिन महाप्रभु ने जब उनके दर्शन किए थे गांठोली ग्राम में तब उनको गोपाल जी कहते थे। तो ये भी ठाकुर जी वज्रनाभ के स्थापित किए हुए आदि जो जो गोविंद देव आदि है उनमें से ये भी देव हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं इसी वर्णन से भगवद गीता में श्री कृष्ण के उपदेश प्रारंभ होते हैं। इसी श्लोक से जो अभी बताया जा रहा है भगवद गीता यहां से शुरू होती है तथा देहांतर प्राप्ति। भगवद गीता में कहां से तथा देहांतर प्राप्ति ये कहां कौन सा श्लोक है? देहीन अस्मिन यथा देहे कौमारम यो वनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। देह के अंत होने के बाद तो इसका अर्थ क्या हुआ? पुनर्जन्म होता है। देह का अंत होने का मतलब उसके बाद क्या होता है? तो दूसरा जन्म होता है। तो स्वर्ग में ये देश यहां से छोड़ के कोई नरक में जाएगा कोई स्वर्ग में जाएगा फिर वहां से वापस लौट के आएगा अथवा किसी और नीचे जूनी में चला जाएगा। तो ये श्लोक भी ये श्लोक इस श्लोक से सिद्धांत कौन सा स्थापित होता है आज के श्लोक से कि स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ लेकिन फिर भी धरती के ऊपर आना पड़ेगा। इसका मतलब पुनर्जन्म होता है पुनर्जन्म होता है। कल किसी ने पूछा था स्वर्ग से वापस लौटने वाले लोग प्रायः ये भारतवर्ष अपना है ना ऐसे अन्य और वर्ष है नौ उन नौ वर्षों में जो लोग लौट के आते हैं स्वर्ग से वो बहुत बड़ा भोग करते हैं वहां रहते हैं 10,000 साल तक वहां भोग करते हैं बूढ़े नहीं होते हैं बीमार नहीं होते हैं और एक साल जीवन का रहता है तब एक पुत्र संतान होता है तब तक स्कूल भेजने की भी चिंता नहीं होती है कि रोज कौन भीड़ में स्कूल के सामने ट्रैफिक से गुजरेगा। यहां हमारे लोगों का आधा टाइम बच्चों के स्कूल के बाहर से गुजरने में लगता है जिंदगी का छोड़ने जाओ और लेने जाओ एक एक घंटा स्कूल की ट्रैफिक में फंसते हैं। वो सड़क के आने वाले लोगों को आखिरी एक साल बचता है तब बच्चे का जन्म होता है और फिर वो वापस चले जाते हैं बच्चा जाने बच्चे का काम जाने। तो ये स्वर्ग के लोगों में आने वालों के लिए बहुत सुंदर भोग है और फिर वहां से इस धरती के ऊपर आते हैं और तभी मानव के रूप में ही प्रायः स्वर्ग से आएगा तो मानव ही बनेगा और सुंदर उसका रूप होगा उधार होगा दान देने वाला क्योंकि देवता से लोग आएगा लाया है तो देवता देवता के लोग से आएगा है तो दानी पुरुष होगा सुंदर होगा बड़ा बड़ी उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी विद्वान होगा। ये लिखते हैं कि जिसका सुंदर काया अति उत्तम विद्या उत्तम कुल जिसको प्राप्त होता है समझ लो कि स्वर्ग से लौटा हुआ है और दान में उदारता जिसकी है और जो नरक से लौट के आएगा वो भी मानव जन्म में आएगा और जब मानव जन्म में वो आएगा तो उसके लिए लिखा है कि कोर्ट के अंदर उसका केस तो सारी उम्र चलता रहेगा वकीलों को छोड़ के या वकील उसमें इसके लिए नहीं लिखा है साफ ऐसे क्लियर नहीं कहा है कि वकील भी रोज ही जाते हैं कोर्ट में तो कहां से आए भगवान जाने लेकिन काम जो करते हैं वो लगता है कि नरक से ही आए जो आजकल काम कर रहे हैं। तो और दूसरा रोगी जो ऐसा रोगी के उसको निवारण होना ही नहीं उस रोग के साथ ही जीना है हाँ जीवन भर रोगी और फिर बिल्कुल कुरूप है जिसको आदमी देखना नहीं चाहता है। और चौथा भी एक लक्षण है कि ये नरक से आए हैं जी नीच लोगों से प्रेम करने वाला क्रोधी आदि क्रोधी तो वैसे भी लगता है नरक से ही आया है तो आदमी कहते हैं तुम नरक कहां से साथ में लाए हो। एक आदमी का मृत्यु हो गया तो एक बुढ़िया घर में बैठी थी बेटे को बोला बेटा देखो ये स्वर्ग में जा रहा है कि नरक में जा रहा है। इसने बोला ये कैसे पता लगेगा माता जी यहां से स्वर्ग में जा रहा है कि नरक में जा रहा है इसकी तो अर्थी उठा के जा रहे हैं राम नाम सत्य करते हुए। बोला कैसे माता जी पता लगे? बोला देखो अगर 500,000 आदमी जा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, इसका मतलब अच्छा आदमी है, अच्छे काम किए हैं, तो निश्चित रूप से स्वर्ग में जाएगा। और 2-4 आदमी है और उठाने वाले भी कहते हैं कि इसको गाड़ी में ले जाओ, और कहते जान छूटी हमारे यहाँ से, तो जो यहाँ दुनिया को दुख देता वो तो वैसे ही नरक में जाएगा, और कहाँ जाएगा? जो इसी को किसी ने सुख इस दुनिया में नहीं दिया है तो कहाँ जाएगा? तो यहाँ से पता लग जाता है कि ये कहाँ जाएगा। वैसे भी आपको भी पता लगता है कि अच्छा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है। आपको पता लगता है कि नहीं लगता है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है? इस दुनिया में ये पता लगता है ना, अच्छा कौन है, बुरा कौन है? जब आपको ही इतना पता लगता है कि यमराज को पता नहीं है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, उसको भी तो पता लगता होगा ना। तो यहां इस श्लोक से एक तो सिद्धांत स्थापित होता है कि स्वर्ग में जाने वाले को भी वापस आना पड़ता है और नरक में जाने वालों को भी वापस आना पड़ता है। तो असल में ये श्लोक दो बड़े मजहबों के मानने वालों का, दो बड़े रिलीजन के मानने वालों का सिद्धांत समाप्त हो जाता है। एक कहते हैं हम स्वर्ग में सदा के लिए रहेंगे, एक कहते हैं कि जो गया वो नरक में पड़ा है तो हमेशा के लिए वहां दंडी भोगता रहेगा। ये तो गलत हो गया ना। अगर भगवान इतना अन्यायी है कि नरक से कभी उसको मौका ही नहीं देगा कि वो सुधरे, तो ये अच्छी बात तो नहीं लग रही है ना। भगवान दयाकारी नहीं लग रहा है, और स्वर्ग में सबको किसी को भोग दे दे, ये भी भगवान का न्यायकारी नहीं लग रहा है कि अच्छे काम से। तो उनका जितना भोग है वो समाप्त होकर दोनों को आना पड़ेगा, ये कोई नहीं मानता है। और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग में जाने वाले को भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, स्वर्ग में जाएगा फिर भी वापस आना पड़ेगा। अब श्री प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं एक लोक से दूसरे लोक जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। देहांतर प्राप्ति का अर्थ यह है कि यह मानव के शरीर में थे, देवलोक में गए तो देवता जैसे बन गए, वहां का भोग उनको अच्छा, वहां के वस्त्र अच्छे, वहां का वातावरण अच्छा, वहां की सुख सुविधा अच्छी। जो नरक में गए उनको एक स्पेशल शरीर मिलता है, उसका नाम है यातना का शरीर। वो यातना का शरीर, उसका नाम ही यातना शरीर है। तो वो देह ऐसा देते हैं, जैसे यातना शरीर को ऐसे समझने, जिसको पानी के अंदर तैरने जाना है, आजकल बनाए हैं ना, क्या कहते हैं इसको, वाटर पार्क, वहां सबको कौन से कपड़े पहनाते हैं ना, वो वाटर पार्क के कपड़े उसका नाम है, वो पहनोगे तब उसमें जा सकोगे। हा? तो उसका नियमावली यही है ना। तो सर्दी के अंदर सर्दी के कपड़े हैं, तो नर्क के अंदर जाने वाले एक अलग स्पेशल ड्रेस वहां बनी हुई है, उसका नाम है यातना शरीर। तो यातना शरीर वाली ड्रेस पहनने के बाद वो मतलब यातना शरीर का शरीर ड्रेस है ना, तो भगवत गीता से शरीर में ड्रेस ही कहा गया ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो ये शरीर एक कैसी यातना का शरीर, शादी में जाना है तो सबसे अच्छा कोट पहन के जाना है, और मैयत में जाना है तो कुछ फटा फटा कपड़ा पहने जाना है। तो आदमी वही है, कौन सा कपड़ा पहन के जा रहा है, कहां जा रहा है, कैसा कपड़ा है, ऐसा इसका अर्थ है। तो स्वर्ग में जाएगा तो फुल सूट में जाएगा, और नरक में जाएगा तो फटे कपड़े पहने जाएगा। समझ लो कि इसका अर्थ ऐसे समझना चाहिए, उसका शरीर ऐसा मिलेगा। आत्मा तो वही है, आत्मा का देहांतर होता है, जिस लोक में जाएगा उसको, अगर किसी को मानो चंद्र लोक में गया तो चंद्र लोक में कैसा शरीर है वहां के लोगों का, कोई सूर्य लोक में गया तो अग्नि का बना हुआ शरीर है। हाँ, सारा बना हुआ ही अग्नि का है, वहां जलेगा कहां से, अग्नि को अग्नि कैसे जलाएगी? तो वैसे उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। तो पहले यह सिद्धांत है कि सब लोगों में जीव है, सब लोगों में जीव है, जितने जितने लोक हैं वहां सब प्राणी रहते हैं। जैसे प्रभुपाद ने आगे कहीं लिखा है कि कोई चांद के ऊपर कोई नहीं रहता है, वहां से घूम के आके कह दे, अरे चांद में तो चंद्रलोक में बहुत लोग रहते हैं, अब उनको दिखते नहीं है। आपको दिखता है इधर कितने और जीव हैं, आपको दिखता है इस मंदिर में और कितने जीव है हमारे अलावा। अगर किसी वैज्ञानिक को बुला के आओ तो इसमें कोटि कोटि कीटाणु है कि नहीं है, करोड़े वायरस और जरासीम इधर हो गए कि नहीं होंगे, कितने बैक्टीरिया होंगे इधर, लेकिन हम नहीं देख सकते। हम कहते नहीं मंदिर खाली पड़ा था, आप कहेंगे मंदिर खाली पड़ेगा, और कृष्ण बलराम से पूछे तो कहेंगे यहां तो लाखों लाखों प्राणी मेरा दर्शन कर रहे हैं, कोई चुंटी के रूप में करता है वो भी हमको नहीं दिखता है, पांव आता है उसके बाद पता लगता है, लेकिन कितने और जीव इधर होंगे, है कि नहीं है, है ना, पक्का। तो हमको नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है। अरे चांद पे कोई जाए और कुछ नहीं दिखे उसको, पहले तो जा ही नहीं सकता है, जो कहता है वो भी भूल गया है। प्रभुपाद ने ऐसे कह दिया, इसलिए उस समय बहुत से भक्त भाग गए, बोला ये तो साइंस वाले कहते हैं, उधर पहुंच गए, आप कहते हैं महाराज नहीं पहुंचे। बोला नहीं पहुंची, ऐसे तो पहले जा नहीं सकता है, उसके जाने के लिए कोई 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 विधि दूसरी है, वहां की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन वहां आपको कुछ दिखे नहीं। इसका इसका सिद्धांत यह है कि हर लोक में प्राणी है और उनको उनको दूसरा देह वहां मिलता है। आत्मा सब जगह आत्मा का निवास है। और फिर इसी प्रकार जो तामसी हैं वे नरक लोक में प्रवेश करते हैं। अब तामसी ये कहां से शब्द लिया भगवान ने और प्रभुपाद ने, अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुण के व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति का मतलब नरक आदि लोकों में, अधो का मतलब नीचे, नीचे कौन से लोक हैं, नरक आदि लोक नीचे, ऊर्ध्व ऊपर के लोग, ये अधो और अधो, एक अधोगति और क्या ऊर्ध्वगति, दो शब्द हैं। तो ऊर्ध्व तो ये 14 लोग जो हैं उसमें हम बीच में पृथ्वी लोक को छोड़ के 7 ऊपर 7 नीचे, तो जो 7 नीचे हैं उनको अधो कहते हैं और 7 ऊपर है उसको ऊर्ध्व कहते हैं। वो स्वर्ग आदि है, वो नरक आदि। तो यहां है कि जो पापी लोग हैं वो कहां जाते हैं, इसी प्रकार जो तामसी है। देखो तीन गुणों में तमोगुण को हमेशा अलग करके खड़ा कर दिया है भगवान ने, जहां जहां भगवत गीता में बोला बीच में अथ कह के फिर तमो लिखा है कि कम से कम तमोगुण से तो बचना ही चाहिए, नहीं तो नरक में जाएगा। रजोगुण वाला वापस मानव जन्म में पृथ्वी के ऊपर आएगा मानव बनकर। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, रजोगुण वाला मध्य का मतलब पृथ्वी में आएगा मानव बन के। तो तमोगुण से तो बचना ही चाहिए, वहां से ऊपर उठना चाहिए, यह पहली शिक्षा है। क्योंकि तामसी व्यक्ति निश्चित रूप से नरक में प्रवेश करते हैं। नरक के लिए कौन सा रोड है, एक्सप्रेस हाईवे है, काम क्रोध लोभ नरक द्वारम, ये रॉयल रोड टू हेल है। नरक में जाने के लिए आंखें बंद करके काम क्रोध और लोभ ही लोग ये नरक वाले रोड के ऊपर आंखें बंद करके भागते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए। रॉयल रोड टू हेल, काम क्रोध लोभ, ये भगवद गीता का श्लोक है ना, ये तीन नरक के दरवाजे हैं। और तीन भले मानसों की पहचान कौन सी है, 18वें अध्याय में है, यज्ञ तप दान कर्म न त्यजेत। यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, तप सवेरे मंगल आरती में आना, एकादशी रखना, माला जपना, यज्ञ तप दान शरीर का दान मंदिर में सफाई करना, अर्थ का दान प्रसाद वितरण करना, पुस्तक वितरण करना, न त्यजेत कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, पावनानी मनीषिणी नाम, जो मुनि लोग हैं उनको भी पवित्र करते हैं। तो तीन नरक के रास्ते दरवाजे और तीन मुनि बना के भगवान की भक्ति में लगाने के रास्ते हैं। ये भगवत गीता में बहुत तीन मतलब दोनों तरफ तीन तीन रोड है, रोड तीन है, उधर भी तीन है उधर भी तीन है, ये तीन तीन याद करने चाहिए। हाँ हरे कृष्ण बोलो। ए साधु, तीन नरक में जाने वाले कौन से, तीन भगवत धाम जाने वाले कौन से साधन है, यज्ञ तप दान। और यज्ञ की जो प्रभुपाद ने इस यज्ञ के ऊपर जो तात्पर्य लिखा है पता है ऊपर क्या लिखा है, विवाह यज्ञ, विवाह यज्ञ। प्रभुपाद ने इस यज्ञ को पता है उस इस भावार्थ में क्या लिखा है, विवाह यज्ञ। विवाह यज्ञ का मतलब स्त्री पुरुष का विवाह होता है तब जो यज्ञ का होता है, ये भी यज्ञ कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। वहां प्रभुपाद ने लिखा है सन्यासी को वैसे स्त्री पुरुष के विवाह से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये यज्ञ होता है इसलिए सन्यासी करे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लोग क्यों आलोचना करते हैं। यहां प्रभुपाद ने ये भावार्थ लिखा है विशेष रूप से, यज्ञ विवाह यज्ञ संस्कार है। तो ये बात तो साफ हो गई कि नरक में जाने वाले तमोगुणी लोग होते हैं। किंतु ये दोनों प्रकार के प्राणी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, पापी तो पुण्य दोनों। भगवत गीता में कहा गया है कि पवित्र आत्मा भी स्वर्ग लोक में सुख भोग के पश्चात पृथ्वी पर लौटते हैं। क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रिध्रमम अनुपर्प काम कामागतागत। ये जो तीन वेदों के अंदर जो तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाला स्वर्ग में भोगेगा, फिर वापस मृत्यु लोक में आएगा, फिर वापस कर्म करेगा, फिर ऊपर जाएगा, गतागतम काम कामा लभंती, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो दोनों को वापस लौटना पड़ता है। अतः एक लोक से दूसरे में गमन करने से जीवन की समस्याओं का अंत नहीं हो जाता, जीवन की समस्याओं का अंत नहीं हो जाता। कौन सी समस्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कौन सी समस्याओं का अंत नहीं होता? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भाई जन्म मरण के चक्कर से तो मुक्त नहीं हो सकते, चाहे स्वर्ग में जाए हैं चाहे नरक में जाए। तो फिर वे तो तभी हल हो सकती हैं जब हमें ये भौतिक देह फिर धारण न करनी पड़े। अब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे, अब इस श्लोक के आधार पर प्रभुपाद जी पहले ये सिद्धांत स्थापित करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, फिर ये कहते हैं कहीं चाहे जन्म वो स्वर्ग में हो तब भी आप देह को धारण करना ही पड़ेगा। इसका मतलब स्वर्ग के अंदर जो देह है वो भी पांच भूतों की बनी हुई है, पांच भूतों की देह है, इसका मतलब उसमें भी पांच भूत ही है। और ये भगवद गीता में कहा है आत् तो ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक से यहां तक सबको वापस आना पड़ता है, और देवताओं भी तीनों गुणों के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। इंद्र को तमोगुण होता है कि नहीं होता है? इंद्र को तमोगुण नहीं होता तो ब्रज के ऊपर इतनी वर्षा करके क्यों ब्रजवासियों को डुबाना चाहता? तो तमोगुण का प्रभाव इंद्र के ऊपर आया कि नहीं आया? तो असुरी भाव आ गया। क्या इंद्र को मालूम नहीं था? वो गैया मां के साथ गया नहीं था भगवान को बुलाने के लिए? तब तो प्रार्थना करके आया था आप आना हमारा उद्धार करना देवताओं का, और फिर क्या हो गया? उसको गया था ना, बुलाने गया था, फिर भी थोड़ी देर के लिए उस गुण के प्रभाव में आ गया। तीन गुण से वो भी मुक्त नहीं है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कब हम इस जब हम भौतिक शरीर लेने से मुक्त हो जाएं तो हमारी समस्याओं का समाधान समाप्त हो गया। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, कैसे कैसे शरीर भौतिक लेने से मुक्त हो सकते हैं? तब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे तभी संभव है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो, जैसे कि स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 4:9 में कहा है। अब हम कैसे अपनी समस्याओं से मुक्त होंगे? जन्म कर्म च मे देव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति स्वार्जन। ये श्लोक भगवद गीता का सबसे मुख्य श्लोक है। प्रभुपाद ने एक दिन कहा, प्रभुपाद जी एक दिन पूछा सबसे कि भगवद गीता का मुख्य श्लोक कौन सा है? किसी ने सर्वधर्मान परिचय कहा, किसी ने मन मना कहा, किसी ने तद्विधि प्रणिपाते न कहा, लेकिन उस दिन प्रभुपाद ने कहा जन्म कर्म से देव, ये सबसे मुख्य श्लोक है। सबसे मुख्य श्लोक ये है, क्यों? क्योंकि इस श्लोक के अनुसार जो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य मानता है उसको वापस भौतिक शरीर धारण नहीं करता करना पड़ता। तो दिव्य का अर्थ क्या है? भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, इसका अर्थ क्या है? दिव्य का अर्थ तीनों गुणों से परे है। एक दिव्य की परिभाषा ये है, भगवान का जन्म कर्म काम और जन्म और कर्म दोनों तीनों गुणों से परे है, अलौकिक है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जन्म क्यों होता है? हमारे कर्मों के अनुसार। भगवान का जन्म कर्मों के अनुसार नहीं होता है, उनकी अपनी इच्छा से होता है। अथवा कोई प्रार्थना करता है तब आते हैं, जब देवता जाके प्रार्थना करते हैं तब भगवान आते हैं, किसी कर्म के बंधन से नहीं आते। तो इसलिए दिव्य है कि भगवान कर्म के बंधन में नहीं है, भगवान तीनों गुणों के अंतर नहीं है, इसके वो दिव्य है, ये तत्व है। इसको जो जानेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का यह अर्थ है स्वभाव, दिव्य प्रकृति को मतलब स्वभाव को, मेरा दिव्य स्वभाव को जो जानता है वो देह को त्याग कर संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, वरना मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वो मेरे सनातन धाम को, यही जीवन की सिद्धि है और जीवन की समस्याओं का सही हल है। हमें न तो उस लोकों में जाने के लिए इच्छुक होना चाहिए, न ही ऐसे कर्म करना चाहिए कि नरक में पहुंच जाए। इस भौतिक जगत का पूर्ण उद्देश्य तभी प्राप्त होगा जब हम अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करके भगवान के धाम वापस जा सकें। आत्मस्वरूप को, हमारा आत्मस्वरूप का मतलब जो आत्मा का रूप है। एक शरीर तो हमारा ये है जो सबको दिखता है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का है, वो भी भौतिक है। उसके अंदर आत्मा है, उसका भी एक स्वरूप है, उसको हम भूल गए हैं क्योंकि ढका हुआ है दो पर्दों से। उस स्वरूप क्या है, इसके लिए चेतना महाप्रभु ने उत्तर दिया सनातन गोस्वामी को, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। तो हमारा स्वरूप है कृष्ण के नित्य दास है। तो स्वरूप को प्राप्त करने का अर्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में लगा रहना। तो नित्य सेवा ही हमारा स्वरूप है। फिर वो फूल बनाने की सेवा हो या पानी भरने की सेवा हो भगवान की, या झाड़ू लगाने की सेवा हो, लेकिन सेवा ही हमारा नित्य धर्म है, नित्य रूप है, सेवा रूप है। मोर रूप नहीं है, बैल गाय रूप नहीं है, रूप सेवा है। कैसी सेवा, किस कौन से फार्म में करनी है, वो रूप नहीं है। तो स्वयं रूप को प्राप्त करना है। ऐसे करने का सरलतम उपाय है श्री भगवान द्वारा निर्दिष्ट सर्वधर्मान परित्यजमाम एकम शरणम व्रज। मनुष्य को न तो पवित्र न ही अपवित्र होना चाहिए। यहां सर्वधर्मन का अर्थ क्या लिखा, भगवान प्रभुपाद ने लिख दिया, स्वर्ग नरक में जाने वाले दोनों रस्तों से को परित्याग करके। तो यहां कौन से धर्मों को छोड़ने की बात कर दी, कर्मकांड के सारे धर्मों को। वैदिक धर्म तो वैदिक धर्म है ना, यहां सर्वधर्मान में वो आ गया, वैदिक धर्म जो स्वर्ग में जाना वाला उसका परित्याग कर दो। निस्त्र गुण भव अर्जुन, तीन गुणों से ऊपर आ जाओ। और फिर यहां भी कहा है ब्रह्म शब्द अतिवर्तते। ब्रह्म शब्द मतलब वेदों के शब्द का अतिक्रमण कर देता है भक्त। जैसे वेदों में कहा है संध्या वंदन करो, लेकिन माधवेंद्रपुरी कहते संध्या वंदन तुमको, नमस्कार मेरे पास टाइम नहीं है। ये हो गया सर्वधर्म परित्याग। हे देवताओं मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर सकता। पितरों मैं आपको प्रणाम करता हूं, अब मैं आपको जलपान नहीं कर सकूंगा। क्यों, बोलो मैं मुकुंद की सेवा में लग गया, मैंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, अब मैं आपकी सेवा से मुक्त हो गया। ये हो गया सर्वधर्म परित्याग की परिभाषा। ये सर्वधर्म परित्याग जो ये श्लोक है माधवेंद्रपुरी का है ना, हाँ, संध्या वंदन तुभ्यम नमस्कारम, माधवेंद्रपुरी का श्लोक है ये। सर्वधर्मान परित्यज्य की परिभाषा है। जाति धर्म, कुल धर्म, वैदिक धर्म, नीति धर्म, ये सब छोड़ के भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना। इसका उदाहरण कौन है, गोपियां वृंदावन की। कुल धर्म, जाति धर्म, नीति धर्म, सब धर्मों का परित्याग किया, कृष्ण के शरण में गई, कृष्ण प्राप्ति, ये सर्वधर्मान परित्याग। तो ये रास्ता है, मनुष्य को न तो पवित्र नहीं अभी पवित्र होना चाहिए, उसे भक्त होना चाहिए, न पवित्र न पवित्र भक्त होना चाहिए। और श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होना चाहिए। समर्पण की विधि भी सरल ही है। अब समर्पण कैसे करना चाहिए, मतलब भगवान का शरणागत कैसे होना चाहिए, सर्वधर्मान पर माम एकम शरणम कैसे होना चाहिए। तब कहते हैं एक बालक तक कर सकता है। अब प्रभुपाद उसको सरल कितना है, बोला एक बालक भी कर सकता है। कौन सा सरल काम है? भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने का आसान काम क्या है? बहुत सरल काम क्या है जो एक बालक भी कर सकता है? सुन लीजिए, मन मना भग मद भक्तो मर्यादी माम नमस्कार। मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव श्री कृष्ण का ही चिंतन करे। कैसे करे? हरे एक लिखा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हुए करे। कैसे भगवान का चिंतन रोज करे? मन मना कैसे करे? बोला हरे कृष्ण मंत्र जपे। ये पहला। दूसरा, मनुष्य को चाहिए कि वो श्री कृष्ण का भक्त बने, उनकी आराधना करे और उन्हें नमस्कार करे। ये चार बातें हो गई। कृष्ण का भक्त बने कैसे? हरे कृष्ण जपेगा कृष्ण का भक्त बन जाए। फिर भगवान की आराधना करे, भगवान को रोज भोग लगाए आरती करे, ये आराधना हो गई। और प्रणाम करे, ये नमस्कार हो गया। इसका अर्थ सीधा सा ये है, इसलिए प्रभुपाद ने दो काम बताए और ये चेतना महाप्रभु ने बताए। किसको? सनातन रूप गोस्वामी गोस्वामी को। एक तो मंदिरों का निर्माण करो। मंदिर क्यों निर्माण करें? बोलो भगवान की आराधना करने के लिए। भवमद भक्त के लिए क्या करना पड़े? मदयाजी मेरी पूजा करो। पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे तब पूजा होगी ना। माम नमस्कार प्रणाम मुझे करो, मंदिर होगा तब होगा ना। तो मंदिरों का निर्माण क्यों किया? भगवद गीता के श्लोक के अनुसार, भगवान का शरण लेने के लिए, ताकि हम भगवान की पूजा। तो हर घर में क्या होना चाहिए? भगवान का मंदिर। छोटा सा भगवान का सुंदर मंदिर बनाना चाहिए। रोज भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा भगवान की करना, भगवान को भोग लगाना, आरती करना, जलादि का स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, ये हो गया मज्याजी। माम नमस्कार भगवान को सुबह शाम आते जाते, जब भी घर में आए तो प्रणाम करें, जब घर से जाएं तो प्रणाम करें। जैसे पुराने जमाने में घर में बड़े आदमी जो घर में होता था, उसके चरण छू के फिर जाते थे, बाहर वापस आते थे, उनको प्रणाम करते थे। तो भगवान सबसे बड़े घर में है। घर से कहीं बाहर निकले तो भगवान को प्रणाम करके आज्ञा लेके निकले कि हम आपकी आज्ञा से अभी आपकी सेवा में जा रहे हैं। वापस आए तो भगवान को प्रणाम करके रिपोर्ट देनी चाहिए कि हम आपका ये सारे करके हम काम करके आए, ये आज आपका संपन्न काम हुआ, इसमें कुछ हमारे को अर्चन हुई, आप कृपा करके हमें बुद्धि दीजिए हम कैसे आपकी सेवा करें। तो नित्य प्रतिदिन ऐसे भगवान की अर्चना, उनकी सेवा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो मन अपने आप भगवान में लग जाएगा और भगवान का भक्त बन जाएगा। तो मंदिर बनाना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये दो ही काम है जिनके द्वारा भक्त बन सकता है। तो हर घर में ये होना चाहिए। इस प्रकार उसे अपने जीवन के समस्त कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करना चाहिए। यह भावार इस श्लोक का समाप्त होता है। तो आज के श्लोक में पहले तो ये सिद्धांत स्थापित हुआ कि नरक या स्वर्ग में कहीं भी जाएगा वापस आना पड़ेगा, भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा, इसलिए इस दोनों में जाने की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। नरक में तो कोई इच्छा नहीं रखता है, जबरदस्ती डाला जाता है, स्वर्ग में इच्छा रख के जाता है। तो नरक में जाने के काम नहीं करना चाहिए और स्वर्ग में जाने की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का भक्त बनना चाहिए। कैसे भगवान का भक्त बनना चाहिए? घर में मंदिर को स्थापित करना चाहिए अथवा भगवान के मंदिर में प्रतिदिन आना चाहिए, भगवान के मंदिर में आके प्रणाम करना चाहिए। देखे अभी देखो ये भक्त आया है, बड़ा अच्छा है, भगवान ने इसको संपन्न बनाया है, सुंदर वस्त्र पहने हुए है, फिर भी कितना सुंदर दंडवत प्रणाम कर रहा है। ये हुआ भगवद गीता की शिक्षा, भागवत की शिक्षा का असर की ओर प्रणाम भी ठीक कर रहा है। बहुत से लोग भगवान विष्णु को, नारायण कृष्ण को प्रणाम हमेशा अपने अपने लेफ्ट साइड से भगवान को रख के करना चाहिए। सामने से प्रणाम करना, सीधे तरफ से प्रणाम करना, पीछे से प्रणाम करने से सारे पुण्य नाश होते हैं। ये नीति शास्त्र का श्लोक है। सामने सीधे हाथ से पीछे से प्रणाम करने से पुण्य क्षय होते हैं, इसलिए उल्टे हाथ से प्रणाम करना चाहिए। ये केवल शिक्षा गौड़ीय वैष्णव में प्रभुपाद जी के द्वारा हमको मिली है। हम प्रणाम भगवान को अपने लेफ्ट साइड पे रख के करते हैं, क्योंकि हम भगवान की शक्ति हैं। पंच तत्व में देखेंगे तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सीधे तरफ है, अद्वैत आचार्य सीधे तरफ है, क्योंकि वो तो विष्णु तत्व है, लेकिन गदाधर शक्ति तत्व है और श्रीवास शक्ति तत्व है, जीव शक्ति है, तो इसलिए वो लेफ्ट साइड में। प्रभुपाद एक बार किसी देवी के मंदिर में कोई ले गए पुजारी, तब अपने शिष्यों को कहा जैसे मैं प्रणाम करूं वैसे करना, सीधे हाथ से प्रणाम किया। उसको प्रणाम, देवी आदि का प्रणाम, देवता का प्रमाण सीधे हाथ से होता है, क्योंकि वो भी जीव है हम भी जीव है, तो उनका सीधे हाथ से होता है। और प्रायः गुरुजनों को प्रणाम सीधे होता है, सीधा होता है, बिल्कुल दंडवत सीधी होती है उनके सामने। हम सीधा इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान की तरफ चरण जाते हैं, लेकिन जो नेम है गुरु को प्रणाम करने का वो सीधा है, बिल्कुल डंडे की तरह आगे सामने गिरना, साइड में नहीं सीधा गिरना। नियमावली ये है कि प्रणाम के भी विधान है। तो देखो ये सब प्रणाम, ये देखो इनको शिक्षा कैसे अपने आप मिल रही है। ये मंदिर बना तब ना, सब प्रणाम कर रहे हैं ना, तो भगवान के भक्त कैसे बन रहे हैं? मंदिर बना तब बन रहे हैं ना। तो मंदिर घर में बनना अथवा मंदिर में आना ये रोज का नियम होना चाहिए, और मंदिर में आके प्रणाम नहीं, और स्त्री को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए। ब्राह्मण बगैर आसन को के बैठे ये पृथ्वी को स्वीकार नहीं है, और स्त्री का वक्ष स्थल धरती को लगे अपराध पाप में आता है, पृथ्वी को ये स्वीकार नहीं है। वेद को गीता को धरती के ऊपर रखे ये भी अपराध है, आसन के ऊपर ब्राह्मण के लिए आसन, इनके लिए आसन, और स्त्री का वक्ष स्थल नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे तीन चार नीति श्लोकों और ये शास्त्र का नियम है कि प्रणाम भी किसको कैसे करना। तो ये पहला सिद्धांत, पुनर्जन्म होता है, चाहे स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं, नरक में जाने के बुरे काम नहीं करना चाहिए, हमको भक्त बनना चाहिए। भक्त बनने के लिए भक्तों के संग में ये जो चार सूत्री प्रोग्राम है भगवान श्री कृष्ण का, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कारो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो और मेरा भक्त बनो। कोई कहते कृष्ण भक्त क्यों बन रहे, क्यों भगवान कहते मेरे भक्त बनो। और भक्त कैसे बनेंगे, अर्जुन को कब कहा भगवान ने भक्तोसी में सखा चेती, तुमको मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इसका मतलब भक्त बनना। वो बनता है भक्त कौन है जो गीता को पढ़ता है, जो गीता को सीखने का प्रयास करता है वो भगवान का भक्त है, भगवान उसको भक्त मानते हैं। अर्जुन को भक्त क्यों मान रहे हैं, क्योंकि गीता सीख रहा है, गीता को सीख रहा है इसलिए उसको भक्त कह रहे हैं। तो गीता को सीखना चाहिए, भागवत को सुनना चाहिए, भागवत में भक्तों का वर्णन है। तो ये काम करने से ये श्लोक हमको ये संदेश देता है। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक घंटा हो गया पूरा, आप निकाल दीजिए।